शांति। सभी एक हाथ हिलाकर आदरणीय छोटे लाल भाई जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय भाई साहब को 1978 में बाबा का ये श्रेष्ठ ज्ञान मिला और 83 से ही आप मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं समझती हूँ आंगन में हर किसी को भाई साहब नजर आए होंगे। हर दिन भाई साहब की सेवा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है और जो यहाँ रात्रि क्लास रोज होता है वो रात्रि क्लास के प्रोग्राम को सेट करने की जिम्मेदारी आदरणीय भाई साहब की है। तो हमें सूरज भाई जी का क्लास और रामनाथ भाई जी का क्लास का जो लाभ मिला उसका श्रेय हमारे आदरणीय भाई साहब को जाता है। और आज भी आपके रात्रि क्लास भारत भूषण भाई कराएंगे। तो इस प्रकार से कल भी हमें हमारे गीत गाने वाले सतीश भाई जी का क्लास का लाभ मिला। तो ये सारी चीजों की सेटिंग आदरणीय भाई साहब करते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशियस, दुबई तथा लंदन में भी आप योग भट्टी के कार्यक्रम कराते रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि आपके लौकिक परिवार में आपकी तीन बहनें तीनों ही ज्ञान में चलती हैं, दो बहनों के घर पे गीता पाठशाला चलती है और सबसे अहमियत की बात है कि आपके लौकिक बहनों की 5 बच्चियां बाबा की सेवा में समर्पित है। जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हमारे घर वाले ज्ञान में चलने के लिए प्रेरित कब होते हैं? जब हमारा आचरण उतना श्रेष्ठ और अनुकरणीय होता है। इसलिए निश्चित है आदरणीय भाई साहब ने अपने जीवन से अपने घर के बच्चियों को ऐसी प्रेरणा दी जो उन्होंने भी अपने जीवन को बाबा की सेवा में समर्पित किया। तो आदरणीय भाई साहब से हम बहुत सुंदर विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय।
ओम शांति। जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, हम सभी देख रहे हैं कि परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, हलचल की आती जा रही है। उधर हलचल और इधर हमारी स्थिति अचर अडोल बनती जाए, तभी हम अनेक आत्माओं को हलचल के प्रभाव से मुक्त रह सकेंगे और स्वयं भी उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकेंगे। तो उसके लिए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है, तभी हम श्रेष्ठ स्थिति द्वारा परिस्थितियों में विजयी बन सकेंगे। एक अव्यक्त बाप दादा का संदेश की एक लाइन मुझे याद आ रही है। अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है, परिस्थितियों में विजयी बनना है, सहज निरंतर योगी बनना है, उस संदेश की एक लाइन यह है कि परिवर्तन ही प्रगति का साधन है। परिवर्तन ही प्रगति का, उन्नति का साधन है। जब भी बाबा जिस मुरली में हमें जो इशारा दे, कुछ परिवर्तन को कहे, वैसा हम तुरंत करके चलते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी प्रगति उन्नति समाई हुई है। आप कितने भी भट्ठी कर लो, कितने भी क्लास कर सुन लो, अगर सुनने के बाद वहीं छोड़ दिया तो जीवन में कुछ उसका फायदा नहीं होगा। जो कुछ सुना है उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाकर परिवर्तन करके चलें तो प्रगति का, उन्नति का अनुभव होगा। और एक बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। यदि हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, योग युक्त है, तो परिस्थितियां स्वतः ही हमारे अनुकूल बन जाएंगी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, जैसा कि अभी संदेश की लाइन बताई, परिवर्तन प्रगति का साधन है। तो हम अभी कुछ परिवर्तन माना अभ्यास, अगर जिनको जीवन में सहज निरंतर योगी बनना है, पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना है, पवित्रता में संपूर्ण बनना है, तो अभी से ही ये तीन अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में करके चलें। क्लास सुनते सुनते भी आप ये कर सकते हैं। यहां से समझो का अब आखिरी दिन है, भट्ठी का आज है, तो यहां से ये तीन अभ्यास की रूहानी सौगात आप लेकर जाएं और ये रोजाना की दिनचर्या में करें तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति श्रेष्ठ योग युक्त बनी रहेगी, आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, प्रगति होती रहेगी। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। यहीं 50 से ज्यादा लोग बैठे तो अभी से देखना शुरू करते हैं, जब भी जिसको देखे, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। कम ज्ञान है आप सबको, समझ है, नॉलेज है, लेकिन कितना प्रैक्टिकल करते हैं वो हम सब जानते हैं। तो हम अगर जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं तो परिवर्तन करके शुरू कर दें अभी से ही, तो प्रगति का अनुभव। क्यों, क्या होगा इससे, कि जो कुछ हमारी आंखें देख रही है, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार हुआ दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना ले, रूहानी बना ले, दिव्य बना ले, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, इस देह और देह की दुनिया से जीते जी मर जाओ। क्या होगा इससे, कि जैसे ही हम शरीरी बनते हैं तो आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे आ जाती है, और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, संसार में उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा आपको वहां मौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आएगा। एक अनुभव प्रैक्टिकल का, एक भाई बाबा के बच्चे दुकान बंद करके जा रहे थे, रात के 10 बजे वापस घर लौट रहे थे। उस दिन उस रास्ते पर लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो किसी ने उनको कहा भी भाई इस रास्ते से आप ना जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, नहीं तो कोई भी घटना हो सकती है आपके साथ। तो कहने लगा कौन क्या करेगा, भगवान हमारे साथ है, इधर से जाएंगे, ऐसा सोच के उधर से चल पड़ा। तो जहां बहुत अंधेरा था वहां जाकर उसको आवाज लगाई, या तो आप अभी रुक जाओ, नहीं तो अभी हम आपको खत्म कर देते। खड़ा हो गया, कुछ झाड़ियों में छुप के लोग बैठे हुए थे, 5-6 लोग उसके आसपास आके खड़े हो गए और कहा जो भी तुम्हारे पास है निकालो, नहीं तो अभी हम आपको खत्म कर देते। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा है, आप लोगों को जो चाहिए सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। इतना कहकर वो बिल्कुल शरीरी बन के, बिंदु बन के बाबा को याद कर रहा है कि बाबा बस अभी आ जाओ, आपकी मदद की आवश्यकता है। तो कैसे भगवान उसकी मदद करता है, एक वंडरफुल अनुभव है। तो एक व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है, एक उसके पास जो भी सामान कीमती है वो सब निकाल रहा है, घड़ी, चैन, अंगूठी, पैसे, जो भी है, और 3-4 लोग उसके आसपास खड़े और वो बाबा को याद कर रहा है बिंदु बन के। तो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है उसको ऐसा लगता है उसको कोई पकड़ कर ले जा रहा हो, तो जोर से चिल्लाता है, मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, कोई पकड़ के ले जा रहा है। अरे बोल क्या हुआ, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, कौन पकड़ के ले जा रहा है इसको? नहीं नहीं, मेरे कोई पकड़ के ले जा रहा है। अब जो पकड़ के ले जा रहा हो और दिखाई नहीं दे रहा हो तो कौन हो सकता है? भगवान के अलावा भूत आत्मा, जिससे उसका हिसाब किताब होगा उसको ही दिखाई देगा, और किसी को नहीं दिखाई देगा। तो ये सोचकर वो डर गए कि भूत तो नहीं है, अगर भूत काम कुछ ले गए तो घर भी पहुंच जाएगा, वहां भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए इससे बच के भागो। तो जोर से चिल्लाते भूत भूत भूत, उससे जो कुछ लिया वहीं फेंक कर और भाग गए। तो इस तरह से ये बिंदु है शरीरी बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का भी साधन बन जाती है, इसलिए इस अभ्यास में अपने आप को परफेक्ट बनाना है। बाबा की ये भी शब्द है बच्चे, यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विदानर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा, जो आपने अभी अनुभव में सुना। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। हम सभी के संगम योगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो जो हमें अंत में बनना है, हम अपने उस संपन्न स्वरूप को, फरिश्ते रूप को बार बार अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है, तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। तो अभी दो मिनट के लिए हम उस फरिश्ता स्थिति का सभी अनुभव करेंगे। तो ऐसा अनुभव करना है कि ये मेरा शरीर धीरे धीरे लाइट का बनता जा रहा है, और बनते बनते सारा शरीर लाइट का बन गया है, और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट, और मुझे आत्मा से चारों ओर लाइट और माइट की पावरफुल किरणें फैल रही है। देखो अपने उस सुंदर डबल लाइट फरिश्ते रूप को, कितना हल्का न्यारा और प्यारा लगता है। अब मैं फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा हूं सूक्ष्म वतन की ओर, और उड़ते उड़ते पहुंच गया हूं सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में, जहां हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं। उनकी भ्रकुटी से ज्योति बिंदु से बाबा चमक रहे हैं। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, और वरदान दे रहे हैं बच्चे, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीत आत्मा हो। अनेकों बार तुम सभी ने माया के अनेक विघ्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है, और फिर से विजयी बनना है। बाबा ये भी वरदान दे रहे हैं, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें वरदान में दे दी हैं। जहां भी तुम जाओगे ये सर्व शक्तियां तुम्हारा साथी बनकर साथ निभाएंगी, और कदम कदम पर सफलता की अनुभूति कराएंगी। इस प्रकार प्यारे बाबा से वरदानों की अनुभूति करते हुए अब मैं फरिश्ता चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैलाता हुआ इस संसार में अवतरित हो रहा हूं। ओम शांति। तो इस प्रकार से जब हम स्वयं को फरिश्ता समझकर दूसरों को उस रूप में देखेंगे तो हरेक की गुण विशेषता महानता ही नजर आएंगी, तो आपके अंदर भी आती चली जाएंगी और आप भी एक विशेष आत्मा महान आत्मा बन जाएंगे। तो ये तीनों अभ्यास यदि हम रोजाना की दिनचर्या में करके चलते हैं तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि वहां आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे, लेकिन होगा करने से। तो अभी से अभ्यास शुरू कर दें। अगली पॉइंट, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि ये नियम है। सबसे पहले मन में किसी बात के लिए संकल्प आता है ना, मुझे ये काम करना है, वहां जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे। तो संकल्प हमारा पॉजिटिव पावरफुल है तो उसका रिजल्ट वैसा होगा, और संकल्प यदि हमारा व्यर्थ नेगेटिव साधारण है तो उसका रिजल्ट वैसा होगा। क्योंकि बाबा ने तो कहा ये जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हम हरेक अपने आप से पूछ लें, क्या जो मैं बनना करना चाहता हूं या चाहती हूं मैं वही सोचती हूं, या कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते। क्योंकि हमारे मन का एक एक संकल्प हमारे मन शरीर कार्यों पर वैसा ही प्रभाव डाल रहा है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। अब आपने लक्ष्य तो रख लिया, मुझे सहज निरंतर योगी बनना है या फरिश्ता बनना है, और विचार चल रहे हों दुनियावी धंधे धोरी के इधर उधर के, कैसे उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो जो लक्ष्य रखा है वैसा ही संकल्प वैसा ही चिंतन हमारे मन के अंदर चले तो ही हम अपनी उस मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो जैसे जैसे ये ध्यान रहे, जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, हमारे एक एक संकल्पों में सिद्ध होने की पावर आती जा रही है, वैसा बनने करने की शक्ति आती जा रही है। इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते हैं हम ना सोचें। यदि जो नहीं चाहते वो संकल्प आ गया और वो एक साकार हो गया तो वहां एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ध्यान देने की बात है कि जो चाहते हैं वही सोचें। तो कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन शरीर और कार्यों पर पड़ता है, बहुत ही कम लोगों का ध्यान इस बात की ओर जाता है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक पहले मैं सुनाता हूं एक नेगेटिव विचार का अनुभव, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सके। एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूं और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, कहां जाएं क्या करें, बड़ी आयु में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हमने विचार किया ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इनके साथ हुआ तो जरूर इन्होंने कुछ गलत सोचा होगा। तो उससे पूछा कि भाई याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो एक मिनट में सोच कर कहता है कि हाँ हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो, तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। तो ये बड़े ध्यान देने की बात है। तो देखो एक नेगेटिव विचार में वो पावर है, वो शक्ति है, तो पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है, तो आप क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल विचार का अनुभव। एक भाई को कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में पहुंच गया, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जिंदा रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया, उसने डॉक्टर की बात सुनकर एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है, इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया कि मुझे जिंदा रहना है, भगवान की सेवा करनी है, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए, और जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स निकलते गए, हर 4 महीने के अंदर वो परिवर्तन हो जाते। तो और आज इस बात को लगभग 16 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति। ताली बजाने, थोड़ा जोर से बजाइए। क्यों मैंने ये बात कही, मैं देख रहा हूं कोई कोई आत्माएं थोड़ा सा वाणी से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ताली बजती है तो अलर्टनेस आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती भाग जाएगी है। हाँ, तो इसलिए जहां आपको लगे कि जरूरत है तो जरूर बजाएं, ताकि सब में चुस्ती बनी रहे, क्योंकि समय ऐसा है, थोड़ा चाहता कोई नहीं लेकिन सुनते सुनते चले जाते हैं वाणी से परे हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठे सभी, ताकि आप क्लास का पूर्ण आनंद ले सकें। शरीर से तो यहां बैठे लेकिन बुद्धि कहीं और होगी तो फिर क्लास में सो जाएगा है, तो इसलिए यहीं बैठे तो अच्छा रहेगा। आपको वो पॉइंट, वो अनुभव, वो बातें सुनने को मिलेंगी जो कि आपको जीवन में अनेक परिस्थिति समस्याओं में काम आएंगी विजयी बनने के लिए। इसलिए टॉपिक ऐसा है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों में विजय कैसे बने। देखो ज्ञान आप सबके पास है, योग भी आप सब करते हैं रोजाना, लेकिन जब किसी के सामने परिस्थिति समस्या आती है तो फिर क्या होता है, प्रश्न उठता है, हलचल होने लगती है, क्या करें, कैसे करें, ये करें, वो करें, क्यों सब कुछ होते कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि ज्ञान बुद्धि से भूल गया है, भगवान से बुद्धि योग टूटा हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आता क्या करें। इसलिए ज्ञान को इमर्ज रूप में रख के चलना और योग का प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग कर चलना, तो अनेक परिस्थितियों में सहज विजयी बनकर सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अगली पॉइंट, अमृत वेले आंख खुलते ही अपने श्रेष्ठ स्वमान को इमर्ज कर ले, और ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नफा चढ़े शक्ति की अनुभूति, और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हाउस हूं, अवतरित फरिश्ता हूं, जहान का नूर, भगवान के दिल तख्त नशीन आत्मा। तो स्वमान से क्या होगा, हमारे विचार महान बनते हैं। विचार महान है तो स्थिति को महान, श्रेष्ठ, योग युक्त बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो स्वमान की सीट, स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदल कर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। प्रैक्टिकल का अनुभव आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई किसी से पैसे ले लेते हैं, देते नहीं है, जब पैसे नहीं मिलते हैं तो हलचल होती है, ज्ञान योग सब एक तरफ रह जाता है, टेंशन हो जाता है, उसी में बुद्धि योग चला जाता है, क्या करेंगे। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक भाई ने जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए में, फाइनल हो गया सौदा, फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। वो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते। तो उसने 20 लाख रुपए दे दिए, पैसे लेकर व्यक्ति बदल गया कि आपको ये प्लाट नहीं, ये प्लाट देंगे। एक जैसे बराबर के साथ साथ 2 प्लाट थे, बात हुई थी, 1 नंबर की वो देना चाहता है 2 नंबर, बोल नहीं मुझे तो 1 नंबर ही चाहिए, बोले 1 नंबर नहीं मिलेगा, बोल 2 नंबर देंगे। तो बोल ठीक है आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया, महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा है। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उस भाई का फोन आया, भाई साहब मेरे सामने ऐसे से बड़ी समस्या आ गई है, वो व्यक्ति पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। तो हमने बताया कि आप एक प्रयोग करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे लिए। ऐसे में इनका रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचे और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापिस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ये संकल्प में इनका जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। तो बोल ठीक है, उसने ऐसे योग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं कि मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचे और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने, बाबा के योग ने कराया। तो आप में से विकनों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए श्रेष्ठ स्थिति द्वारा हम अपने मन की भावनाओं को सुश्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं। आज बहुत भाई बहनों के पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ा विघन हमारे मन की नेगेटिव भावनाएं, दुर्भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले नफरत की भावनाएं बनी हुई है। अगर ऐसा कहीं है, आपके सामने विघन आ रहे हैं, पुरुषार्थ में रुकावट आ रही है, तो चेक करो कहीं हमारे मन में किसी के लिए भी तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत की भावना है, नहीं है। अगर है तो चेंज करो। हमारे मन में निरंतर हर आत्मा के प्रति कंप्लीट शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो हमारे मन की शुभ भावना में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देगी। लेकिन ये गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी हमारे मन में शुभ भावना रहे, ये जरा सबसे नहीं हो पाता है, थोड़ा मुश्किल बात है। उसके लिए चाहिए आत्मा में ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में रहना चाहिए, तभी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याण की रहेंगी, अन्यथा ज्यादातर लोगों की भावनाएं गलत व्यवहार को देखकर बदल ही जाती हैं। तो जहां हमारे मन में निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रहती है, तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है, उसके द्वारा भी आप किसी भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, रुकावट डालते हैं, या कोई ऐसे भाई भी होंगे जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, वो विघन डालती है, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है। तो ऐसी आत्मा के मन के विचारों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनका बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी, बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना, इतना विरोध करती थी। लेकिन उनका बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार भाना आना जाना होता था, तो बाबा के सेंटर पर भी क्लास करके आ जाते थे। वो भाई एक बार मधुवन आए बाबा से मिलने के लिए, पांडवन में रुके एक रात, और रुकने के बाद सुबह क्लास के बाद हमारे से मिले। उन्होंने यही प्रश्न किया, भाई साहब मेरी युगल बहुत विघन डालते, मेरे को ज्ञान में चलने से रोकती, मैं क्या करूं? तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए, अगर आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, तो आज से ही 2 बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। क्या 2 बातें? पहली बात तो, एक तो आप चाहे आपका वो कितना भी विरोध करे, लेकिन एक तो अपने मन में उस आत्मा के प्रति कंप्लीट शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलनी। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्यों करना है, क्या करना है, वो मैं बतला रहा हूं। अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है, तो जिस भी आत्मा को हम शुभ भावना के वाइब्रेशन देते हैं, वो उस तक पहुंचते हैं, और उसका भी अंतर मन शांत और खाली है, जागृत है, तो उन वाइब्रेशंस को सहज ही कैच कर लेगा, और फिर वो आत्मा वैसे करेगी। ये है इसका विधि तरीका, इसलिए प्रयोग अमृत वेले ही करना है। प्रयोग क्या करना है, कैसे करना है? जिस आत्मा को आप बदलना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, उस आत्मा को अमृत वेले सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो अपने सामने, और इमर्ज कर उससे इस प्रकार से बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके उसको दो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, और वो बात भी उससे बता दो जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे इनका 1 सप्ताह अपने युगल को अमृत वेले सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके देना, और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो यहां से गए, जाने के बाद अमृत वेले उठकर अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर और बाबा से ऐसी शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके दिए कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, और वो बातें उससे बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 2 दिन अभ्यास किया अमृत वेले योग में, तीसरे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्टी थी, तो उसने सोचा योग की भट्टी है तो योग की भट्टी में तो जाना है। तो मैंने दो दिन तो भावना का प्रयोग किया ही, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा कि सुख भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्टी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो इतना बड़ा विरोध करती थी रोजाना, वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से भी कनों के सामने ऐसी कोई परिस्थिति हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। इसलिए मैं हर बात के पीछे के अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। किसी के मन में प्रश्न नहीं उठे कैसा कैसे ऐसे करेंगे तो कैसे होगा नहीं हो जी। हाँ देखो बहन जी बतला रहे इन्होंने किया हुआ, चलो अच्छी बात है, मुबारक हो। हाँ भाई जी ने भी किया, इन्होंने को भी हुआ है। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के परिस्थिति, योग युक्त स्थिति द्वारा परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए जी। क्या बोला? अच्छा, श्रेष्ठ स्थिति द्वारा परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए अगली पॉइंट, हम सदैव, एक तो जो हमने बताया अपने सदैव श्रेष्ठ मान में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, दूसरा सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, भगवान को सदैव साथी बनाकर चलो। मुझे और एक अनुभव याद आया स्वमान का। स्वमान की बातें हम रोजाना सुनते हैं लेकिन सुनते सुनते कई बार वो साधारण सी लगने लगती है, लेकिन स्वमान बहुत ही ऊंची स्थिति है। स्वमान की श्रेष्ठ स्थिति में वो पावरफुल वाइब्रेशन से हैं कि आप दूसरों के तो मनोवृत्ति को चेंज कर ही सकते हैं लेकिन अपने और दूसरों के शारीरिक कर्म भोग में भी विजयी बन सकते हैं। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक जगह हम भट्टी कराने जा रहे थे, आबू रोड से ट्रेन में बैठे, सीट के नीचे सामान रख रहे थे, तो कुछ ऐसी नुकीली चीज थी तो उंगली को लग गई और आधा इंच उंगली कट गई, खून निकलने लगा, दर्द भी बहुत होने लगा। अब ट्रेन तो चल पड़ी, ट्रेन में तो कोई दवाई गोली की बात नहीं है, लेकिन यह देखकर मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं आया। यही संकल्प आया कि उनका ये भी किसी जन्म का कोई हिसाब किताब होगा, थोड़े में चुक तो हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बाबा बैठा है सब ठीक कर देगा, पॉजिटिव सोचा। सीट पर बैठ गए, ट्रेन चल पड़ी, यही उंगली थी, इस उंगली के ऊपर ऐसे दूसरी उंगली रख ली और इस तरह से सामने करके अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर पावरफुल वाइब्रेशन दिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूं, इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए, दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देते 25 बार संकल्प किया और उसके बाद उंगली हटा ली, खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 15-20 मिनट के अंदर बिना किसी दवाई गोली के सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो कहीं परिस्थिति आए तो आप भी ऐसा प्रयोग करके देख सकते हैं। और एक और अनुभव याद आया, बीकेज में, बीके भाई बहनों में ज्यादातर विटामिन B12 और D3 की कमी रहती है। आप में से किसी को है? 8-10 ने 15-20 ने हाथ उठाई है। अब उस पर प्रैक्टिकल का अनुभव सुना देता हूं, बिना किसी दवाई बोले कि आप नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि वो मिलता है मांसाहार में, वो हम खाते नहीं इसलिए उसकी कमी होती है, फिर इंजेक्शन या गोलियां लेनी पड़ती हैं। मेरे को विटामिन B12 की कमी थी और उसका हर सप्ताह के इंजेक्शन लेना पड़ता था। तो मैं बाबा को एक दिन योग में बैठा बैठा कह रहा, मैंने कहा बाबा ये विटामिन B12 का इंजेक्शन मैं कब तक लेता रहूंगा, आप सुप्रीम सर्जन हो तो आप इसका कुछ इलाज करो। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर कहा। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे योग का प्रयोग करो। तो हमने योग का प्रयोग करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और इस सॉरी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन बाबा थे, क्योंकि ये डॉक्टर सर्जन के संबंध की बात है ना, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन बाबा थे, विटामिन B12 के पावरफुल वाइब्रेशन मुझ आत्मा में आ रहे हैं और मुझ आत्मा से निकलकर सारे शरीर में फैल रहे हैं, जिनसे मेरी विटामिन B12 की कमी पूरी होती जा रही है। फिर से रिवाइज कर देता हूं, कहीं लिख रहे हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से, सर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन बाबा से विटामिन B12 के पावरफुल वाइब्रेशन मुझ आत्मा में आ रहे हैं और मुझ आत्मा से निकलकर सारे शरीर में फैल रहे हैं, जिनसे मेरी विटामिन B12 की कमी पूरी होती जा रही है। ऐसे सप्ताह में 4 दिन 5 दिन ऐसे प्रयोग करते रहे हम, अब योग में अभी भी करता हूं, और वो प्रयोग करते करते आज लगभग 1 साल से ऊपर होने को आया है। अभी तक तो उसकी कोई कमी नहीं लग रही है, ना ही आगे लगेगी। और थोड़ी देर बजाना ताली, 1 मिनट, और अभी 1 महीने पहले हमने हेल्थ की फुल चेकिंग कराई, उसमें विटामिन B12 नॉर्मल निकला है। तो आप भी, जिनको ऐसी कमी लगती है, आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं, क्योंकि दवाई गोली तो आज है कल नहीं होंगी, कब तक लेते रहेंगे हम। तो ये नेचुरल वे में हमारी ये गाड़ी ठीक रहनी चाहिए बिना किसी दवाई गोली के। इस पर भी, वो तो अभी खैर टाइम नहीं, इस पर भी हम आधा घंटा क्लास कराते हैं, कहीं जाते हैं भट्टियों में तो, लेकिन अभी दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हम सदैव भगवान को साथी बनाकर चलें। अगली पॉइंट, एक तो बताया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो, बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो। तो आप वो अनुभव करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ देता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो, तो वहां क्या होगा, कदम कदम पर सफलता मिलती रहेगी, अनुभव करते रहेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर कुछ सहज और सरल हो जाए। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, मान लो बहन जी आपको कोई ऐसी सेवा दे दे जो आपने कभी की नहीं हो, तो सोचेंगे ना मैं सेवा कैसे करूंगी या करूंगा, लेकिन आपने बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया, तो फाइनल बात है कि बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करनी है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है। तो ऐसा ही एक अनुभव, कहीं कोई मुश्किल आए, बाबा ने खुद कहा बच्चे, कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति आए, यदि तुम दिल से बाबा को याद कर कहेंगे प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, मुझे मधुबन में रहते हो गए 42 साल और 47 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। तो एक साल ही हुआ था उस समय की बात है ये, तो उस समय तो जो था पांडव भवनी था, शांति वन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था, सभी दादियां यहां रहती थी, बाबा भी यहीं आते थे ओम शांति भवन में। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों को क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो दादी ने मेरे को कहा कि आपको भाषण करना है, और हम तो नए नए आए थे, कभी 2 शब्द भी किसी के आगे खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। अब दादी ने कहा तो हम ना भी नहीं कर सके, और भाषण करना आता नहीं इसलिए हम हाँ भी नहीं कर सके, चुपचाप सुन लिया। और मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा मेरे को दादी ने बोला है भाषण करना है, तो मेरे को तो भाषण करना आता नहीं, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई, मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है और सफलता पाई है, और फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है। तो थोड़ा सा हल्के हो गए, और बाबा को याद कर ये भी बोल दिया, मैंने कहा बाबा यदि नहीं आए कुछ तो आप ही आना और आप ही भाषण कराना, ऐसे बाबा को बोल दिया। अच्छा प्रोग्राम ऐसा था कि टॉपिक किसी को बताई नहीं जाएंगे, ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ और चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो ऐसा प्रोग्राम था। अभी तैयारी भी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। अच्छा, दूसरा उस प्रोग्राम का नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो हैं वो नहीं, कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। तो अभी तैयारी भी करे तो क्या करे, एक वंडरफुल प्रोग्राम था वो तो, और उसमें एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, सब दादे दादियां आगे बैठे हैं और जिनको कुछ बोलना नहीं आता ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई सब नए नए, जिनको क्लास कराना भाषण करना नहीं आता था उनको ही सेलेक्ट किया गया, क्योंकि उनको सिखाना है इसलिए, और उनमें से एक हम भी थे। तो प्रोग्राम शुरू हुआ जी, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, 4th नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल कर देखा तो बड़ा वंडरफुल टॉपिक निकला। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले भाई इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा, सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया यार, मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद कर बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें 1st नंबर आया। तो आप समझ सकते हैं कि इसको 2 शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, 1st नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है, बाबा। तो उस दिन से एक निश्चय हो गया, भले हमारे कुछ आता हो या नहीं, लेकिन यदि हम भगवान को साथी बना के चलते हैं तो वह असंभव भी संभव हो जाएगा। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करनी है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है, तो कदम कदम पर सफलता मिलती रहेगी। अगली पॉइंट, स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हम 2 बातों को अंडरलाइन करके चलें, 2 बातों को अंडरलाइन करके चलें, क्या, फुल स्टॉप, दूसरा फुल स्टॉक, दोनों इंग्लिश शब्द हैं। फुल स्टॉप माना बीती बातों को बिंदी लग जाए, क्योंकि देखने में आता है बीती बातों के चिंतन में व्यक्ति का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। क्यों बीती बातों का चिंतन चलता है, हम कई बार चाहते हो उसको फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, क्योंकि उसके लिए चाहिए आत्मा में ज्ञान और योग का बल, सदा इमर्ज रूप में रहना चाहिए, तो आप फुल स्टॉप लगा सकते। और दूसरा, फुल स्टॉप लगाने के लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर, विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, कंट्रोलिंग पावर कहां से आएगी, उसके लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। विचार महान कैसे बनेंगे, विचार महान बनेंगे ज्ञान के मनन चिंतन से, स्वमान के अभ्यास से विचार महान बनेंगे, और जहां विचार महान है तो उन्हें आप सहज कंट्रोल कर सकेंगे, और जहां कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाएगा। दूसरा, फुल स्टॉक, हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होना चाहिए, तो चेक कर लो जरा सबका स्टॉक फुल है सब खजानों से, या कई माया चुरा तो नहीं लेती है कोई खजाने को, है वो हमारे आसपास ही चक्कर लगा रही है, जरा सा भगवान से अटेंशन हटा तुरंत अपनी ओर उद्योग ले जाएगी। तो क्या क्या खजाने दिए बाबा ने हम सबको, समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, गुणों का, शक्तियों का, तन, मन, धन, ये भी खजाना है। तन, मन, धन, ये कैसे खजाना है, जितना इस तन को हम बाबा की सेवा में लगाएंगे तन स्वस्थ और निरोगी बनेगा, अधिक सेवा करके भाग्य बना सकेंगे। मन को जितना बाबा में लगाएंगे मन और शक्तिशाली बनेगा, और धन को जितना बाबा की सेवा में सफल करेंगे ऐसी आत्माओं को धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। आप में से पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, सूरज भाई जी ने क्लास में बात बताई, यहीं एक भंडारी ऐसी, उसमें डालने से बढ़ोतरी होती है। जैसे तो बाबा के यज्ञ में कहीं भी सफल करो बढ़ोतरी होती है, लेकिन उसका खास अनुभव है। अभी भी जब भी सूरज भाई क्लास कराना है तो उस दिन रात्रि क्लास कराना है, तब पहले उस भंडारी में डाल के फिर क्लास कराने आए। हाँ हाँ, आप आंगन में आएंगे बताएंगे। तो और तो ये भी भाग्य बनाने का साधन है, तन मन और धन। तो जितना इन सब खजानों को, और जो भी खजाने मिले हैं, उन जितना उन खजानों को हम बाबा की सेवा में सफल करते हैं, दूसरों को दान देते हैं, उतना वो खजाने बढ़ते जाते हैं और हमारा स्टॉक फुल हो जाएगा। हाँ, वो देख के देना केवल धन का, बाकी तो जिसको भी दो जो खजाने चलेगा, केवल धन की बात कही है बाबा ने उसमें। हाँ, वही मैं बताया ना, केवल धन की बात को देखकर दान देना है पात्र को, बाकी तो सब खजाने खूब बांटो सबको। तो इस पर एक प्रैक्टिकल का अनुभव, जितना हम बाबा के यज्ञ में खजानों को सफल करते हैं या दूसरों को दान देते हैं, तो कैसे वो खजाने बढ़ते जाते हैं। एक बुढ़िया माता थी, उसके पास बहुत धन था, अथा धन, लेकिन बाबा की भंडारी में थोड़ा सा ही करती थी। तो और भाई बहन उसको बोलते थे कि माताजी ये सब कुछ विनाश हो जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, पता चल गया तो गवर्नमेंट ले लेगी, इससे तो अच्छा क्यों ना आप बाबा की भंडारी में करके अपना भाग्य बना लो, भविष्य में उतना मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो किसी का नहीं सुनती थी, थोड़ा सा ही करती थी। तो एक दिन रात को वो सोई हुई थी, तो नींद में उसने स्वप्न देखा, तो स्वप्न में वो स्वर्ग में पहुंच गई है। बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल बाग बगीचे देखकर ही बुढ़िया की दिल खुश होगी, कितना अच्छा स्वर्ग है। तो और लोग स्वर्ग में सब अपने अपने घरों में जा रहे, लेकिन इसको अपने घर का मालूम नहीं था। तो स्वर्ग के गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था, इससे उसने पूछा, भाई मेरा घर कौन सा है स्वर्ग में, मेरे को भी तो बताओ, ताकि मैं भी देखूं कैसा बनाया आप लोगों ने मेरा घर स्वर्ग में। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाकर कहा, भाई जाओ ये माता जी को इनके घर तक छोड़ कर आओ। तो व्यक्ति माता जी को लेकर चलता है वहां से, तो वहां तो बड़े बड़े महल थे, और जैसे जैसे वो आगे चलता जाता, धीरे धीरे छोटे छोटे महल आते जा रहे। तो बुढ़िया सोचने लगी, कहां लेके जा रहा है, यहां तो और छोटे छोटे महल आते जा रहे। लास्ट में जाके एक छोटी सी कोठरिया माता की बनी हुई थी। तो कहा, माता जी ये आपका महल है। देखकर ही बुढ़िया बड़ी परेशान, कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना ही छोटा सा महल क्यों बनाया है। तो व्यक्ति जवाब देता है, माता जी हम क्या करें, आपने जितना उधर से इधर भेजा उससे हम इतना ही बना पाए। समझे, क्यों, क्योंकि वो करती ही थोड़ा सा थी, तो उतना ही मिलेगा ना। तो देखो, भगवान तो दाता है, किसका लेकर क्या करेगा। आप जितना उसके यज्ञ में सफल करेंगे उतना ही आपको भविष्य मिल जाएगा। तो ये सुनकर बुढ़िया की आंख खुली, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं कल से ही अपना सब कुछ सफल करने लग जाऊंगी। रोज सफल करने लगी। तो आप सोच लेना, आप लोगों को स्वर्ग में छोटे महल से काम चलेगा या बड़ा महल चाहिए, इसका निर्णय आप खुद करना। और बड़ा चाहिए तो सब कुछ सफल करना होगा। और देखो, हमको तो बाबा ने बता ही दिया, बच्चे जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो आज है कल नहीं होगा, सब कुछ खत्म होने जा रहा है, शुरुआत हो गई है। इसलिए शुभ कार्य में देरी ना करें, जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हम अपनी बुद्धि की लाइन सदा भगवान के साथ क्लियर रख के चले। देखो, बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल हो सकेंगे। और यदि लाइन क्लियर नहीं है तो प्रश्न उठेगा, क्या करें, कैसे करें, ये करें, वो करें, क्यों सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि बुद्धि और दूसरी बातों में एंगेज है। ऐसा नहीं कि बाबा मेरे कोई टचिंग देता, हर बात की, हर बच्चे को टचिंग देता है बाबा, लेकिन हमारी बुद्धि यदि दूसरी बातों में बिजी है, एंगेज है, तो उस टचिंग को हम कैच नहीं कर पाते हैं, वहां प्रश्न उठता है। तो बुद्धि की लाइन क्लियर, वर्तमान समय भी आगे आने वाले समय को देखते हुए क्लियर रख के चलना लाइन बहुत बहुत जरूरी है, तभी हम सही समय पर सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल हो सकेंगे। तो कैसे रहेगी बुद्धि की लाइन क्लियर बाबा के साथ, उसके लिए बातें तो बहुत है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म बतला रहा हूं, दो बातों का होना जरूरी है। पहली बात कि बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना जरूरी है। दूसरी बात, अब वापस घर जाने का समय आया है। तो अभी आप लोगों को आज कल जाना है तो क्या करेंगे, जो जरूरी सामान है वो पैक करके रख लेते हैं और टाइम हुआ उठा के चल पड़े। अगर पहले से तैयारी की हुई है तो, और यदि तैयारी नहीं है टाइम हो गया तो, अरे ये लेना था, वो काम बाकी था, ये करना था, और उसी में समय की गाड़ी छूट जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए समय ये इशारे दे रहा है कि आप सब प्रकार के विस्तार को समेट कर सार स्वरूप बन जाओ, क्योंकि वापस घर जाना है। तो और बुद्धि हम सब देखो पवित्र तो बने हैं, लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए उसमें हर एक नंबर बार है। बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना जरूरी है तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी ना। तो उसके लिए हम सब पवित्र तो बने हैं, लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए उसके लिए क्या है पवित्रता की संपूर्णता, इसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने मुरलियों में 7 बातें बताई है। पवित्रता की संपूर्णता क्या है उसकी 7 बातें बताई है। वो 7 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाकर अपने आप को चेक करेंगे तो जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। तो पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता। स्वच्छता क्या, स्वच्छता खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की यदि स्वच्छता है, सफाई है, तो उससे बुद्धि की पवित्रता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एकव्रता। एकव्रता अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहां तक बनी है, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तीसरा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का बाबन का मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना। मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना अर्थात मनसा वाचा कर्मना, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ब्रह्माचारी कहा जाता है, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। चौथा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का एक साकार मुरलिम बाबा ने बात बताई, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। पांचवा स्वरूप बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है इसलिए उससे भी मुक्त बनो। सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बनकर चले, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है इसलिए उससे मुक्त बनो, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चलो। छठी बात पावन का संपूर्ण निर्विकारिता। निर्विकारिता अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। एक मुरलिम बाबा ने कहा छोटे मोटे छोटे छोटे 5 विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, मोटे मोटे 5 विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो चेक कर लेना कोई बाल बच्चा है तो नहीं, कोई भी नेगेटिव ईर्ष्या द्वेष घृणा जलसी नपरा सुस्ती आलस विलापन, ये सभी अपवित्रता की लिस्ट में। 7वां स्वरूप भावन का संकल्प अथवा स्वपन में भी, संकल्प अथवा स्वपन में भी कोई भी है पवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। संकल्प अथवा स्वपन में भी कोई भी है पवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे। तो इस तरह से इन 7 बातों को सामने रखते हुए हरेक अपने आप को चेक कर लें कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहने लगेगी, और जहां लाइन क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे, तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक बार हम नेपाल जा रहे थे भट्टी कराने के लिए बाय रोड, तो इंडिया बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था, उधर नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था। मैं सही 11:30 बजे पूरा कर दूंगा, किसी का घड़ी देखने का संकल्प ना चले, क्योंकि 1 घंटे का ही समय मिला है, 10:30 से 11:30। हाँ, क्योंकि नहीं तो रोजाना का समय 10:15 से 11:15 का होता है, लेकिन आज देरी से हुआ ना शुरू, तो इसलिए। तो नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर ही अपना सेंटर था। तो इधर इंडिया बॉर्डर पार करके जैसे हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे, तो उस दिन मिलिट्री वालों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ था, ना किसी को, नेपाल बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था उन्होंने, ना किसी को जाने दे रहे थे ना आने दे रहे थे। तो हम भी पहुंचे तो हमारे को बोला कि वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। वो नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर जो अंदर अपना सेंटर है वहां भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो एक बड़ी समस्या हो गई ना, अभी क्या करें जी। तो हमने वहां से थोड़ा सा अलग होकर और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी समस्या बताई, बाबा ऐसे ऐसे अभी हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहां से 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहां भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं अब, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं हमने बॉर्डर बंद किया है, वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो अब मुझे क्या करना है आप वही बताओ, मैं वही करूंगा। ऐसे मैंने सारी समस्या बाबा को याद कर बताई, और उसके 2 मिनट बाद बाबा से टचिंग मिली, बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा कोई बैठा तो है, तो एक और भाई थे हमारे साथ, उसको बोला कि मैंने कहा भाई साहब इनका देखो मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर देखो उस साइड को बैठा हुआ, आप उससे चल के बात करो। तो गए, दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था। तो उस भाई ने कहा साहब हम ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हैं, ये भाई हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर से आए हैं, और इनके लिए हमारे यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर हमारा सेंटर है, और इनके लिए वहां बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा आप ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हो, हाँ जी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, फिर तो जाइए। जो 2 मिनट के पहले ना हो गई, फिर 2 मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे? बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी, तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल हो गए। इसलिए बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रख के चलना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार हम बिहार जा रहे थे पटना भट्टी कराने, तो वो इलेक्शन का समय था, तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की। तो उस भाई ने हमारी की लाइन गाड़ी को भी लाइन में खड़ी कर दिया, और हमारे को ऐसी देरी हो रही थी, क्लास का टाइम हो गया था। मैंने कहा भाई लाइन में खड़ी नहीं करो आप, जिधर से गाड़ी आ रही है ना उधर से चलो। बोल भाई सब आगे पुलिस वाले रोकेंगे तो। मैंने कहा चलो तो सही, कौन हमारे साथ है, किसकी सेवा में हम जा रहे हैं। तो वो चल पड़ा जी, आगे जाके पुलिस वालों ने रोका, तो हमने खिड़की खोल के कहा ओम शांति। अच्छा अच्छा ये तो ओम शांति वाले ना, जाओ जाओ जाओ, बस हो गया काम। तो उसके साथ हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, तो ये फाइनल बात है कि दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेगी। लास्ट पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति द्वारा परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हम अपने सभी बोझ बाबा को अर्पित कर दें और हल्के हो जाएं। कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति आई है, दिल से बाबा को याद कर बता दो, बाबा 1 सेकंड में आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं सोचे, हम सिर्फ अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, बस उसे याद करें, वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। हम बहुत जन्मों से, अनेक जन्मों से क्या क्या बोझ उठाए हुए हैं, पुराने स्वभाव संस्कारों का, नेगेटिव विचारों का, कमी कमजोरियों का, अनेक प्रकार के ईर्ष्या द्वेष घृणा बदले की भावनाओं का। तो आत्मा बोझ उठाते उठाते थक गई है, निराश उदास हो गई है, तो भारीपन जहां है तो कैसे उड़ पाएंगे है? तो अपने सभी बोझ बाबा को अर्पित कर दो और हल्के हो जाओ, तो देखो तेज ही उड़ते रहेंगे। तो एक प्रैक्टिकल का अनुभव, लेटेस्ट कार वंडरफुल अनुभव, आप भी प्रयोग करके देखना। पीछे मेरे को एक ग्रुप में क्लास कराया, तो बेंजी जैसे कि अनुभव सुनकर मेरी परीक्षा लेने लगी, तो भले लो जी इसमें क्या है। तो एक जगह हम भट्टी कराने के लिए गए, तो एक दिन की भट्टी थी, तो बहन जी को पूछा भाई कितने लोग होंगे भट्टी में, तो उन्होंने कहा 75 भाई बहन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 75 के अंदर ही होंगे। तो हमने मधुबन की 75 टोली उनको दे दिया। भट्टी शुरू हुई, पूरा होते होते रात तक 85-90 के अंदर भाई बहन हो गए। मुझे इस बात का मालूम नहीं था, बहन जी ने गिनती किए थे, उन्होंने और 15-20-30 टोली के बनाकर रख ली, भाई वो टोली कम पड़ेगी तो भाई जैसी ये टोली दिला देंगे। तो लास्ट में अनाउंसमेंट किया, भाई सभी टोली लेने के लिए आएंगे, भाई बहने आते जा रहे हैं, हम बाबा की याद में सबको टोली देते जा रहे हैं, आते जा रहे, देते जा रहे। लास्ट में मैंने देखा कि 5-6 पीस टोली के जब बाकी बचे हैं तो भाई बहनों की लाइन थोड़ी लंबी लग रही है, ज्यादा लग रहे हैं। तो मैंने मन ही मन दिल से बाबा को याद कर कहा कि मेरे बाबा ये मधुबन की टोली कम नहीं पड़नी चाहिए, अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर कहा। बस भगवान जी के लिए तो कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करेगा वो तभी जब हम दिल से याद कर उसे कहेंगे। तो ऐसे हमने बाबा को याद कर कहा, मैं उसी में से टोली देता जा रहा हूँ, भाई बहने आते जा रहे हैं, टोली देते जा रहे हैं, लेकिन मैंने फील कर रहा हूँ कि वो टोली कम नहीं हो रही है। क्योंकि योग युक्त स्थिति में कोई चीज आप देखेंगे तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप तो देखने में नहीं आता, धुंधला सा रूप नजर आता है ना। तो मैं फील कर रहा हूँ कि वो टोली उतना ही कि उतना ही है, और उस सब में से सबको मैं उसी में से टोली देता जा रहा हूँ, और लास्ट में हमने सब में सबको उसी में से टोली खिला दी और 3 पीस और बच गए। लास्ट में बहन जी बोलती, भाई जी आपने तो कमाल कर दिया, 75 में से 85 लोगों को टोली खिला दी और 3 पीस और बचा लिए। तो मैंने कहा कमाल हमारी नहीं है, ऊपर वाले बाबा की है, वो जादूगर है तो क्या नहीं कर सकता है। तो ऐसे भगवान को कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति आए उसको दिल से याद कर अर्पित कर दो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाएगी। ऐसे बातें अनुभव तो बहुत हैं और भी, लेकिन अब समय हुआ इसलिए हम पूरा करते हैं। तो इस तरह से श्रेष्ठ स्व स्थिति बनाकर परिस्थितियों में विजय प्राप्त करते निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहें और बाप समान बन जाएं, यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति।
आदरणीय भाई जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है।
जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा, जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा, हर लम्हा दीप बन जले कांटों पे भी मेरे संग संग चले, अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा।